आगे रुकू नंबर 22, 22, 153 से 162, सूरत निसा। टॉपिक है बनी इसराइल की हुज्जत बाजियां। यसअलुक अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस्समा। आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे भी बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दे। बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद इसके कि इनके पास बहुत सी दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को अपना महबूब बना लिया। लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और सरीख दलील अनायत फरमाई, और इनका कॉल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और इन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज़ न करना। और हमने इनसे सख्त कौलो इकरार लिए, यानी जो भी इनसे कहलवाना था उनसे कहलवाया, कन्फेस करवाया। ये सजा थी बसबब इनकी अहद शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफर करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि हमारे दिलों पर खिलाफ है, हालांकि दरअसल इनके कुफर की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, इसलिए ये कदरे कलील ही ईमान लाते हैं। और इनके कुफर के बायस और मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा बोहतान बांधने के बायस और यूँ कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए वही सूरत बना दी गई थी। यकीन जानो कि हज़रत ईसा के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं। इन्हें इसका कोई यकीन नहीं सिवाय अंदाज़ों की बातों का, यानी तखमीने लगाते हैं। तखमीनी बातों पर अमल करके इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके, और क़यामत के दिन आप गवाह होंगे। किस बात पर? जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी इनके जुल्म के बायस, और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे वो मना किए गए थे इसे लेने के बायस, और लोगों का माल नाहक खाने के बायस, और इनमें जो काफिर हैं हमने इनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं और जो इस पर ईमान लाते हैं, जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हम बहुत बड़े अजर अता फरमाएंगे। तो इस रुकू में आपने देखा कि 3 दफ़ा ईमान का तज़किरा, ईमान से मुतल्लिक आयात में पहली आयत 155 निसा, व कौलिहिम कुलूबुना गुल्फ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, इसको हाईलाइट कीजिएगा। ये जो दिलों पे मोहर लगी ना, उसकी तरफ इशारा है, और वो क्या है कि नाफरमानों के दिल सील कर दिए जाते हैं। इससे क्या मुराद है कि यानी अंदर की गंदगी अंदर ही रहती है और बाहर की अच्छी खबर अच्छी बात उनकी अंदर नहीं जाती। आज भी कुछ लोग मुंह खोल कर कहते हैं जो मर्जी कह लो, हमें तो नहीं असर होना, जो मर्जी कह लो। आप कभी भी किसी बिगड़े हुए बच्चे को जहन में लाकर सोचिए, चीखो बोलो जो मर्जी कह लो, और भी स्टबन हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पकड़ होती है। जब शुरू शुरू में बंदा किसी काम को ना माने तो अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के मौके खोलता है, आम करता है। लेकिन जब एक बंदा मुंह भर के कह दे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो आपको भी उससे फिर पीछे हट जाना चाहिए। कभी किसी दूसरे को गुनाहगार ना कीजिए अपनी नेकी के लिए। हम कभी कभी अपनी नेकी के नाम पर दूसरों से इस तरीके से बहस मुबासा शुरू कर देते हैं कि जब तक वो चीख के ना बोले हम भी चुप नहीं होते। तो अपनी नेकी दूसरे का गुना मत बनाइए। फिर 159 सूरत निसा, इसका टॉपिक क्या है कि अल्लाह ने कुरान में अंबिया कराम का असल मुकाम बता दिया, जबकि कौमों ने उसमें कमी और बेशी की, और उनका हाल ये था कि जिसको अच्छा लगा उसने उसको खुदा का बेटा भी बना दिया, और जो अच्छा न लगा नऊज़ बिल्ला उन्होंने वलदुज़्ज़िना तक कह दिया। फिर इसके बाद सूरत निसा की आयत 162, ला केने रास खून नफे इल्मी मिनहुम, इससे एक मैसेज लीजिए जिसके अंदर हक हो वो बाहर के हक को फौरन पहचान लेता है। ये बात याद रखिए, बारिश सबके ऊपर बरसती है लेकिन जिस जमीन में जरखेजी होती है ना वो जमीन एकदम उसका असर लेने लगती है। अब यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम की बात हुई, ये बहुत भारी आयतें हैं। आज पूरी कह लीजिए कि क्रिश्चियनिटी के अकायद को एक तरफ रखें और यहूद के इस जुमले को कि नऊज़ुबिल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने यूसुफ नज्जार के साथ जिना किया था, और वो कौन थे, केयर टेकर थे, किस चीज़ के, बैतुल मक़दस के। आप देखिए जिनके जहनों में गंद होता है ना वो नेक लोगों के बारे में भी गंदी बातें सोचते हैं। अच्छा वो वहाँ टेकिंग करते थे, अच्छा मरियम इबादत करती होंगी, फिर वो अकेले होंगे, फिर कभी ये हो गया वो हो गया, नऊज़ुबिल्लाह। जुमला लिखिए कि शरीयत का निफाज होता तो भी मरियम पर बुहतान लगाने वालों को 80 कोड़े पड़ने थे। हमने इस्लाम का निफाज ना करके, ना सिर्फ ये है कि इस्लाम के लिए बल्कि क्रिश्चियनिटी के लिए भी कितने दरवाजे हक के बंद कर दिए। फिर इसमें आप देखिए कि रास खून अफिल इल्म की बात हुई, तो रास खून अफिल इल्म कौन होते हैं, माजी के असलाफ में से किसी का कॉल था अरबी का, उसी को आपके लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रास कहते हैं मजबूत, आप उर्दू में बोलते हैं असर व रसूख, रसखा कहते हैं जमाना, जैसे आप खेमे लगाते हुए कील या फिर बड़े बड़े लंबे लंबे डंडे नीचे डालकर उसके ऊपर एक मजबूत सी कैंपिंग करते हैं ना, इस अमल को रसखा कहते हैं, यानी इल्म में गड़े हुए लोग, कुठुके हुए लोग। तो फरमाया कि रासिखून वो होते हैं जो अल्लाह के साथ ताल्लुक में तकवा के मेयार पे होते हैं, लोगों से जब ताल्लुक इनका आता है तो आजजी वाले होते हैं, दुनिया से जब उनका ताल्लुक पेश होता है तो दुनिया से बेरग़बत होते हैं, और नफ्स के साथ जब उनका मामला आता है तो वो नफ्स के साथ मुजाहिदा करने वाले होते हैं, और मैं तो कहूँगी कि मुहासिबा भी अपना करते हैं, मुशारता भी करते हैं, शर्तें लगा लगा कर खुद को गुनाहों से दूर करते हैं। तो बहरहाल खूबसूरत पैगाम था इसका आपके और मेरे लिए। इसमें फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या है कि शरीयत में मनमानियाँ नहीं करनी, आपस की जिदबाजी और बुगज से बचना है, और सूद एक छूत है इससे बचना है, और हर वो काम नहीं करना कि जिससे हमारा दीन बदनाम हो। आगे जी रुकू नंबर 23, 23, 163 से 171, टॉपिक है ईमान वालों को हिदायत। इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहिन व नबीयीना मिन बादी, यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलादों पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए हैं, और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया, और हमने इन्हें रसूल बनाया खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर न रह जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बाहिकमत है। जो कुछ आपकी तरफ उतारा गया है इसके बारे में खुद अल्लाह गवाही देता है कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौरे गवाह काफ़ी है। अलग से नोट कर ले 166 आयत का नंबर। अक्सर इसको सुनकर सुनाकर मेरे जुबान से एक बात निकलती है कि इल्म और इल्म वालों की शान में कोई और आयत ना उतरती, कोई और हदीस ना होती, तो ये आयत 166 निसा काफ़ी थी। अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के साथ इल्म वालों का नाम लिया। अल्लाह मुझे आपको इल्म की बेहतरीन कदर करके इसको मानने वाला बना दे। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया इन्हें अल्लाह हरगिज़ हरगिज़ न बख्शेगा और ना इन्हें कोई राह दिखाएगा सिवाय जहन्नम की राह के, जिसमें वो हमेशा पड़े रहेंगे। और ये बात अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है, यानी बंदा कहते हैं कैसे इतने लोगों को अल्लाह डालेगा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा मेरे लिए नहीं। और फिर एक पुकार है इंसानियत के नाम, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बिक्री हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज़ जो आसमान और जमीन में है, और अल्लाह ताला बहुत दाना और हिकमत वाला है। कितनी प्यारी पुकार है। देखिए कहते हैं ना कि प्यार से भी पुकारा, गुस्से से भी पुकारा, कभी डरा भी दिया, कभी कुछ कह भी दिया, कभी कुछ सुना भी दिया, लेकिन जिन कानों के अंदर डांट पड़ चुके हो ना, जिनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हों, वो इतनी मोहब्बत की बात सुन के भी नहीं आते अल्लाह की इस पुकार की तरफ। लिहाजा आगे अहले किताब को पुकार है, अहले किताब अपने दीन के बारे में हद से न गुजर जाओ और अल्लाह पर सिवाय हक के कुछ न कहो। मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और इसके कलमे कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया गया था और इसके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है, इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह तआला इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, वो इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह तआला काफी है काम बनाने वाला। तो इस रुकू में दो आयात ईमान से मुतल्लिक हमारे सामने हैं। 170 निसा, या यूहन्ना सुकद जाकुमुर रसूलु बिल हक्के मिर रब्बिकुम फामिनु खैरल लकुम। बराहे रास्त यहूदे मदीना को दावत है, फिर भी नहीं माने। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिनको नहीं मानना, उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा वजूद के साथ भी आ जाए, वो नहीं मानेंगे। आज के मुसलमानों को देखकर कई दफा ये ख्याल आता है ना कि अगर हम सभी आज की बजाय नबी के दौर में होते, जो कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी बड़ी करते हैं, नातों में भी कहते हैं। मैं कहती हूँ कभी ये ना कहें, अल्लाह तूने हमें जिस दौर में भेजा हम उसी में खुश हैं, वरना हम इस किताब का हिस्सा होते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई को मुख्तलिर रवैये वाला इंसान नहीं था, अल्लाह ने हमारे पर्दे रख लिए हमें इस दौर में भेज कर। तो अमल क्या निकला कि इंसान का ईमान खुद इसी को फायदा देगा। और फिर आयत नंबर 171, फामिनू बिल्लाही व रसूलिही, इसका पैगाम क्या है? किसी के मुकाम को मुतय्यन करने में हद से आगे निकल जाना फसले शिर्क का बीज बोना है। आज भी गलूफ के नाम पर बहुत शिर्क हो रहा है। आप देखेंगे कि किसी भी दौर के लोगों को अगर आप देखें तो उन्होंने एग्जेजरेशन की, बहुत ही बात को बढ़ाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने इसको नहीं पसंद किया। इस बारे में आपको एक से ज़ायद बार ये बात दिख रही है कि गलूफ ना करो। और गलूफ क्या होता है? एग्जेजुरेट करना, कमी बेशी कर देना। मिसाल है कि खाने में नमक 2 चम्मच डालना था तो 3 डाल दिया, और शुगर चीनी जो थी वो आधा कप डालनी थी तो 3 कप डाल दिए। अब वो मीठा तो है लेकिन वो कड़वा हो चुका है। इसी तरह लोगों ने नबियों की मोहब्बत के नाम पर, और कहीं कहीं अंबिया कराम और फिर उसके बाद आज बुजुर्गान दीन के नाम पे इस किस्म के जुमले बोल दिए कि जो वो खुद कभी ना बोलते। मसलन कई लोग कहते हैं कि हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। अब ये बुजुर्गों के नाम पे लोग कहते हैं, लोग बुजुर्गों ने खुद नहीं कहे कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता ना उजबिला, यानी वो कोई नहीं असमी, और वो अम्मे युजीबुल मुस्तरा हमें नहीं कह रहा, और फ़ैनी करीब वो हमें नहीं कह रहा। हाँ वो चंद बुजुर्गों को कह रहा, हमारी सुनता कोई नहीं और फलां की मोड़ता नहीं। ये तो ऐसी है जैसे फेवरेटिज्म, नहीं बच्चे नहीं माँ बाप को कहते हैं उसकी तो अब हर बात सुनती हैं, मेरी तो अब सुनती नहीं। क्या आप अल्लाह ताला से ऐसी बात करेंगे? नऊज़ु बिल्लाह। और यही सारी चीज़ें गलूब हैं। तो अल्लाह ताला हमारे ईमान और कुफर से चूके बेनियाज है। फिर यहाँ से ये भी पता चलता है कि मुसलसल कुफर यानी इनकार और जुल्म का इर्तकाब करना दिलों को स्याह कर देता है, और दीन में इजाफे की बुनियादी वजह गलूब है। आपके मेरे लिए फेथ इन एक्शन क्या है? कि दीन में गलूब से बचना है, बुराइयों के फैलाने का सबब नहीं बनना। अभी जो कि आप शुरू शुरू में सुन रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद टैली करेंगे कई नातें जो इतनी खूबसूरत होती हैं। नात पढ़ना सआदत की बात है, वो जुबानें मुबारक हैं जो अल्लाह के नबी सल्लम की तारीफ करती हैं, लेकिन कई दफा लोग उसके अंदर गलूफ की वजह से शिर कर देते हैं। अहद को अहमद कह दिया और मीठे नबी की फला फला। अभी एक दो दिन पहले किसी ने कोई क्लिप भेजा, नऊज़ु बिल्लाह यानी मैं क्या कहूँ, मदीना का बाजार दिखाया हुआ, यानी वही दुकानें जो आजकल रियाल रियाल 10-10 रियाल की दुकानें हैं, और उसके साथ पीछे एक नात पढ़ी जा रही है जिसका खुलासा क्या था कि मदीने दिया गलियां ते जन्नत भी ओदियाँ रीसा कर दी। यानी उस जो पीस था उसके अंदर बात क्या थी कि मदीने का बाजार जन्नत से अच्छा है, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें मदीने का बाजार दिखना है। और मदीने का रोजा भी नहीं कहा, मस्जिद नबी भी नहीं कही, क्या कहे? औज़ु बिल्लाह मदीने का बाजार का। और वो सारे परस जूते कपड़े ही दिख रहे थे। मेरा तो दिल कांप गया। मैंने कहा किसी ने कितनी मोहब्बत से ये बनाया है, उसके दिल में कितना प्यार था मदीने का, नबी का, लेकिन ये गलूब है। याद रखिए, ऐसे लोगों की यानी बहुत ज्यादा मुजम्मत की गई है जो मोहब्बत में भी आकर हद से बढ़कर बात करते हैं। आपको कहाँ अच्छा लगता है कि आपको बटरिंग करे? ये गलूब पता क्या है? बटरिंग करना, लिख लें इसको भी, गलूब इज बटरिंग। और रियलिटी कुछ और हकीकत कुछ करके दिखाना। अल्लाह आज बताए, जहाँ इल्म नहीं होगा वहाँ यही होगा। या लोग इल्म लेते हैं या फिर वो ऐसी चीज़ों में पढ़कर कहते हैं बस तारीफें करेंगे और हम अपने ये बचते जाएंगे। आगे देख लें तो रुकू नंबर 24 है, 24, 172 से 176, बहुत ही प्यारा रुकू है। टॉपिक है कुरान करीम हसूल रहमत का जरिया, यानी जिसको रहमत लेनी है, जिसको अपने ऊपर रहमत पानी है, उसको इस किताब से अपने ताल्लुक को जोड़ना होगा। लई यस्तन की फल मसीह यकून अब्दुल्ला, हज़रत ईसा यानी मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं या तकब्बुर और इनकार हरगिज़ हो ही नहीं सकता। और ये मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। ये जुमले आप ज़रा सारे आप अपनी किसी क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आप देख ही रहे होंगे कि पूरा कट हुज्जती का अंदाज है। जब से पारा शुरू हुआ है सूरत निसा का ये हिस्सा नसारा के बातिल अकायद को खोल के हमारे सामने रख रहा है। इसलिए हमें भी जब भी किसी जगह दोस्ती हो, उनके साथ आपका माइंडसेट मिल जाए, तो फिर आपने उनको इंशाल्लाह दीन के नाम पे यानी ऐसी अच्छी जिसको कहते हैं कि लॉजिकल बात करनी है, क्या पता पढ़े लिखे लोग इस बात को सुनकर मान जाएं। फिर आगे ईमान वालों की बात है, पस जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमाल किए हैं, इनको इनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा और अपने फजल से इन्हें और ज्यादा देगा। और जिन लोगों ने आर किया यानी उन्होंने इसमें आर महसूस किया और सरकशी की और इनकार किया, इन्हें अलबनाक अजाब देगा और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह की कोई हिमायती दोस्त और इमदाद करने वाला ना पाएंगे। या अय्युहन्नास, ए लोगों, अब ये सूरत का ना एंड है। आप देख ही रहे हैं कि चूंकि बड़े यूनिवर्सल लॉस हैं, पैगाम बहुत यूनिवर्सल है, तब यहाँ मैन का इनको पुकारा जा रहा है, इंसानियत को पुकारा जा रहा है। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानिब साफ और वाज़े नूरत उतार दिया है। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अन करीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और इन्हें अपनी तरफ की राहे रास दिखाएगा। इंसानियत का पैगाम उनके रब के नाम, आप और मैं सुन रहे हैं, हम कैरियर बनेंगे इसको ले जाकर किसी नॉन मुस्लिम तक सुनाने के। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो, तो इसके छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा। अगर इसकी औलाद ना हो, बस अगर बहनें दो हों, तो इन्हें कुल छोड़े हुए का दो तिहाई मिलेगा। और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल दो औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बह जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ है। देखिए, शुरू में भी मामलात हुए थे विरासत के, यहाँ फिर बात है। इस रुकू में दो आयतें हैं ईमान से मुतल्लिक, 173 निसा, फ़ामल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति फ़युवफ़ीहिम उजूरहुम वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही। इससे क्या पता चलता है कि मोमिन दुनिया और आखिरत में अल्लाह के फजल का तलबगार होता है। फजल मिल गया तो हर चीज़ मिलने से ज्यादा दिल खुल जाएगा इंशाल्लाह। फिर 175 निसा में फ़ामल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वातसमू बिही। इससे क्या पता चलता है कि सबसे बड़ी मता दौलत हिदायत है। हिदायत के बगैर जो भी मिल गया वो बेकार है, वो आजमाइश बनेगा, फितना बनेगा। फिर हमने इसमें कुरान पाक को बुरहान के तौर पे देखा, तो बुरहान किसको कहते हैं? टॉर्च, लाइट को। कुरान कुफर और शिर्क की तारीखियों में हिदायत का नूर है, जलालत की पगडंडियों में सिरात मुस्तकीम है। कुरान अल्लाह ताला की मुकम्मल दलील और हुज्जत है, यानी हुज्जत तमाम की गई, इतमाम हुज्जत कह लीजिए। कुरान के मुताबिक ईमान लाने वाले अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत के मुस्तहक हैं, यानी जिस किसी को अगर हक है तो वो इन्हीं को है जो के इस पर ईमान लाए। और आप देखिए, मैं और आप वो कुरान पढ़ रहे हैं इस वक्त, कितने खुशकिस्मत है आप और मैं, जरा सा खुद को झंझोड़िए, हम कुछ और पढ़े थे। देखिए, हर मजहब वाले के लिए उसकी किताब अहम है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, चाहे वो इल्हामी मजहब है या कोई, छोड़ दीजिए उसको एकदम। लेकिन हमें तो पता है ना कुरान क्या है, और हमें ये पता है ना कि ये यूनिक है। खुद को चुटकी काट करके कि अगर मेरे हाथ मेरा माइंड होती, गीता होती, बाइबल होती, तो क्या था, होती थी क्या? मैंने अपने शौहर के साथ इस्लाम कबूल किया? आर वी मुस्लिम बाय चॉइस और बाय चांस? तुक्का नहीं लग गया? दुआ दीजिए माँ बाप को, और वो दुआ दें अपने माँ बाप को कि नस्ली और विरासती ईमान है। आज आज हमारे खून में वो गर्दिश नहीं, हमारा ईमान वो है ही नहीं कि हम बिलाल की तरह तकलीफें सहते। आज तो इस्लाम पे अमल नहीं हो रहा, आज तो नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, कहाँ इस्लाम के ऊपर कुर्बानियां देनी पड़ती। आज तो हमारा जो ईमान है वो ही सलामत रह जाए तो बड़ी बात है, कहाँ अगर हमें इस्लाम में चॉइस होती। और याद रखिए, कयामत से पहले ये दौर आना है मुसलमानों पे, और ख़ास तौर पे जब दज्जाल आएगा तो वो लोगों का इस्लाम छीनेगा, कलमा पढ़वाएगा अपने नाम का। तो जो आज असिमिलेट करने के नाम पे, और आज नहीं नहीं कुछ नहीं को सब अच्छे सब प्यारे, प्यार 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 मोहब्बत, तो वो वहाँ क्या करेंगे? ये वो वक्त है जब आप अपने ईमान की जड़ें और मजबूत करें। जब झटके लगते हैं ना जहाज में या कोई एयर गैप्स आते हैं, तो वो कहते हैं सीट बेल्ट बांध लें। आप बस में सफर कर रहे हैं, खड़े हैं, एकदम बस में झटका है तो आप ऊपर लगे हुए ना, वो जो ऊपर एक उन्होंने लूप सा दिया तो उसको पकड़ लेते हैं। तो जो आज फितनों का दौर है ना, इस दौर में हमें हकीकत में इस कुरान को और ज्यादा मजबूती से पकड़ना है। जब आप छोड़ते हैं ना ये सोचकर, जैसे 9/11 आया तो लोगों ने दाढ़ियां कटा दी, मोहम्मद नाम काट दिया, अहमद काट दिया, और बहनों ने जो छोटे छोटे स्कार्फ कहीं गाड़ी के डैशबोर्ड में संभाले हुए थे कि बेटे बच्चे को उस मस्जिद छोड़ते जाते वक्त लेना पड़ेगा, वो भी निकाल दिए। क्या चर्चा था, मैं गवाऊँ इस बात की, मैं इधर ही थी उस दिनों में। ना ना ना, गाड़ी भी अगर कहीं रुकी और पता चल गया कि ये मुसलमान है तो फितना होगा बेटा, लग तुम्हारा ईमान पता, कट गए सब नाम कट गए। तो क्या हुआ, सब खुश हो गए आपसे, मिल गया आपको हिस्सा हर जगह दुनिया में। याद रखिए, ये पूरा पारा भी सूरह मायदा शुरू होगी, आपको डांट का अंदाज महसूस होगा, वो मेरी नहीं है, मेरी क्या जरूरत, मेरी क्या औकात। जलाली अंदाज की सूरत आने वाली है हमारे आगे, क्योंकि आखिरी हुज्जते हैं। एक दिन किसी को समझाते हैं, छोटे बच्चे से तो सभी प्यार करते हैं, तो बड़े बच्चे से कैसे आप प्यार करें? छोटा बच्चा गलती करता है आप खुश होते हैं, हंसते, देखो इसने ये बोला, लफ्ज गलत बोले, या कोई तू 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 गिर जाए, चल रहा है तो गिर रहा है। और अगर बड़ा बच्चा ये करे तो आप कहते हैं तुम्हें क्या हो गया? हम बड़े हो चुके हैं, हम मुसलमान कैसे हैं, ये हम सबको देखने की जरूरत है। तो अपने इस ईमान की फिक्र कीजिए, बाकी चीजों को लॉकर्स में रखा हुआ है तो ईमान को हमने सड़कों पे फेंका हुआ है। आज हमारे बच्चे, जिसके बारे में अरबी में कहते हैं कि औलादुना अकबादुना, हमारे औलादें हमारे अकबाद कबद से है, कुरान में भी ये लफ्ज आता है, जिगर लेवर कहते हैं कि हमारे जिगर के टुकड़े जमीन पे फिर रहे हैं, और हमारे तो पता नहीं किधर फिर रहे हैं, हमें तो होश नहीं है, और हम बस उनको इस सेज से आके, चलो भाई अब वो दुनिया तो अपनी बनाए बनाए, कौन मना करता है आपको। तो बहरहाल, फेथ इन एक्शन, रिश्तों की हुरमत का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक मामलात को निभाना है, शरीयत के कवानीन पर खुश दिली से अमल करना है। क्या खूबसूरत पैगाम पर सूरत निसा पूरी हुई। अब सूरत निसा जब पूरी होती है तो आपके मेरे लिए एक सवाल आ जाता है कि अब आगे अगली सूरत मायदा शुरू हो रही है, दोनों में रब्त क्या है? थोड़ा सा इसको भी समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि कुछ लोगों ने इस्लाम के बारे में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, और वो क्या है कि जी बहुत ही डिस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। वाकई आपको ऐसे ही लगेगा, आप देखिए कि हाफ ट्रूथ्स की बात है, हाफ ट्रूथ्स आर वेरी डेंजरस, झूठ से भी ज्यादा नुकसान देते हैं। लेकिन आप कहीं से चलते चलते उड़ते उड़ते कोई खबर सुन लें, कोई बात सुन लें, और वो बात फिर आधी सुनी आधी ना सुनी अगर आगे जाकर सुना दें तो आपको पता क्या होता है, उससे बदगुमानियां पैदा होती हैं, गलत फहमियां पैदा होती हैं। तो हमने सूरत निसा पूरी की, सूरत निसा को अगर मैं एक जुमले में सपोने की कोशिश करूं तो उसका मरकजी पैगाम क्या था कि मुसलमानों को हिदायत की गई थी कि वो सारी दुनिया को, ख़ास तौर पर अहले किताब यानी यहूद और नसारा को इस्लाम की दावत दें, फिर मुसलमानों को मुनाफ़क़त से बचते हुए खालिस तौहीद के साथ ख़ानदान से लेकर रियासत यानी स्टेट तक एक मजबूत इज्तमाईयत कायम करने का हुक्म दिया। यानी मैं इनको अब किताबी जुबान की बजाय अगर अपने लफ्जों में कह दूं तो सूरत निसा आपको अपनी जात से शुरू करके इत्तकु रब्बकुम से तो सूरत शुरू हुई थी, या अय्युह नास इत्तकु रब्बकुम, फिर उसके बाद मियाँ बीवी, सास ससुराल, फैमिली, खानदान, जात बिरादरी, उस तक, और उसके बाद आपने देखा है कि अभी जो हमारा हिस्सा पूरा हुआ है, पूरी इंसानियत तक तुम लोगों को अल्लाह से जोड़ दो। और ख़ास तौर पे जब आप ख़ानदान की बात तो सूरत में पढ़ चुके, जो माशरे की बुनियादी इकाई होती है यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ दी सोसाइटी, अगर आप एक दीवार से उसको जोड़े तो वो पहली ईंट होती है, और वो जब इज्तमाईयत की सूरत में ढलती है तो वो रियासत बनती है। मुस्लिम स्टेट क्या है? बहुत सारे मुस्लिम घरानों का इकट्ठा होना। अब आपके इस शहर में अगर 1,000 घर है मुसलमानों का, तो हर घर में क्या हो रहा है? ओवरऑल वही चीज़ें उस शहर में हो रही हैं, ऐसे ही है ना। यानी वो जिक्सन पजल्स नहीं है, छोटे छोटे पजल्स के टुकड़े मिला दें तो एक होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इज्तमाईयत की छोटी सी चीज़ खानदान, फैमिली सिस्टम, घर मेरा आपका, और उसकी बड़ी चीज़ जो थी वो स्टेट थी। अब खानदान की मजबूती का दारोमदार शौहर बीवी, माँ बाप और औलाद के रिश्ते, फिर उसी के साथ शहर के अंदर बेचारे पिसे वाले गरीब है, बेवाएं हैं, उनके हकूक, रियासत के हकूम करते करते हुआ, वो लोग जो सच्चे दिल से इस्लाम को चाह रहे होते हैं अल्लाह ताला उनको ये सारा कुछ दिखाता है। लेकिन जहाँ बीच में बात आती है कि दूसरे लोग आए तो उनका क्या है, अब यहाँ से ज़रा सा आप सूरत मायदा के साथ इसका रब देखिए कि पिछली सूरत निसा में हमने ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी देखी, और स्टेट यानी मुस्लिम स्टेट जिसको आप सऊदी अरब कह लें, पाकिस्तान कह लें, बर्मा कह लें, कोई भी इस वक्त का इस्लाम फ्रेंडली मुल्क अगर आप कहकर समझ जाएं तो वो ले लीजिए, उसके कवानीन दिए। जबकि सूरत मायदा बड़ी मुश्किल सूरत है, नंबर एक सूरत मायदा जलाली सूरत है। कुरान पाक ही ना सूरतों के मिजाज हैं, जैसे आपके बच्चों के मिजाज है ना, एक छोटा है बड़ा भोला सा है, छोटे नहीं भोले होते, पहला बच्चा भोला होता है, पहला बच्चा हमेशा बोला होता है, शायद माँ को कोई प्रैक्टिस नहीं होती बच्चा पैदा करने की, तो सीधा साधा सिंपल सा बच्चा पैदा कर लेती है, आप आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा, और कुछ बच्चे बड़े मासूम से भी होते हैं, कुछ केयरिंग। तो सूरत मायदा जो है ना, इसमें जलाल है, बहुत जलाल है। हजरत आयशा का एक कॉल भी पढ़ते हैं आप लोग किताबों में कि सूरत मायदा के हर हुक्म पे गौर करो क्योंकि इसका कोई हुक्म मनसूख नहीं है। कई रिवायतों में ये तक कहा जाता है कि मर्दों को सूरह मायदा पढ़ाओ, औरतों को सूरह नूर पढ़ाओ। अभी इनकी रिवायत क्या है इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं आपको अहमियत दिलाने लगी हूँ। लेकिन अब अगर इसको हम देखें पीछे से, तो आपने अभी तक कितनी सूरतें पूरी की सूरह फातिहा के बाद? तीन। कौन सी थी? बकरा, आले इमरान और निसा। ठीक है, उन तीनों सूरतों में आपकी वो दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन पूरी हुई। यहूद के सारे तरीके आपको सूरत बकरा में बता दिए गए, नसारा के अकायद क्या थे ये सूरत आले इमरान में आ गए, और उनके दीन की बिदात और गलूप और गंदगियां और खराबियां ये अभी हमने सूरत निसा में पूरा कर दिया। इतनी बात हो गई। अब यहाँ से सूरत मायदा में इस्लामी अदालतों के क़याम की तरफ इशारा है, ताकि इस्लाम का जो फौजदारी निज़ाम है ना उस पर अमल हो, जिसको आप आज के दौर में ये कह सकते हैं कि एक इल्ज़ाम है आज उम्मत मुस्लिमा पे कि इस्लामिक सज़ाएं बरबेरिक हैं, इंसानियत सोज है, डेथ पेनल्टी फलां है जी, चोरों के हाथ काट दिए गए तो बड़ा जुल्म है, और इसी तरह जो मुहारबीन है जो डकैतियां करते हैं उसको ये करना कराना। इस पूरी सूरत में आपको ऐसे लगेगा कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क को एक मॉड्यूल के तौर पे पेश करें, अच्छा भी हमें बताइए कि अगर इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो क्या होगा, और अगर पाकिस्तान में और फला इंडिया में और चाइना में और इसी तरह से रशिया में और मक्का मदीना में सऊदीया में इस्लाम आएगा तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप सुनेंगे। ज़रा से मिच्योर माइंड के साथ ये सूरत सुनने वाली है, नए साथियों को समझ ना आई तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ख़ास तौर पर सूरत मायदा का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, ये सुलह हुदैबिया के बाद तकरीबन 7 हिजरी में नाजिल हुआ था, जहाँ एहराम की हालत के आदाब बताए जा रहे हैं, फिर सुलह हुदैबिया से मुतल्लिक कुछ आयात हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ आज मैंने आपके लिए पिक की है जिसकी हमें ज़रूरत थी, वो है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा किया। अभी आने लगी आयत पहले रुकू में, 3 नंबर आयत है, आयत नाजिल हुई थी सबसे आखिर में, नबी सल्लम के हज्जतुल विदा के खुतबे के करीब, और सूरत नसर जो इजा जा नसरुल्लाह की वल फत की सूरत में नाजिल हुई थी ना, वो पैगाम इधर इस सूरत के शुरू में आ रहा है। क्यों? कि असल आज जो कुरान पढ़ेंगे उनको तो इस पे अमल करना है ना, इसी पे आज की इस बारे का थीम है, निफाज़े शरीयत, तकमीले शरीयत। आज हम क्या रोएं कि अभी तो हमारी नमाजें नहीं पूरी, शरीयत कहाँ नाफिज होनी है। अच्छा, जब भी कभी इस्लामी सजाओं की बात की जाती है तो मुसलमान शर्मिंदा होते हैं। आपको पता है नॉर्वे में डेथ पेनल्टी नहीं है। अब कोई नॉर्वेजियन किसी मुसलमान से मिलता है तो वो पूछता है, ये बताओ व्हाई योर इस्लाम इज सो हार्ड, व्हाई योर गॉड इज सो क्रूशियल, व्हाई व्हाई क्यों, वो क्यों कहता है कि ये बंदे को मार दो। तो यहाँ मैं आपको दो चार जुमलों में ही कोशिश करके एक हल्की सी बात दूँ। हालांकि अगर आपने कभी ये सूरत मायदा इन डेप्थ की पढ़ ली, या फिर इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट कई कोर्सेज कई रंग में किए हुए हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये सूरतें कुरान में क्यों डाली। अगर सिर्फ कुरान खानी करनी थी, क्या मुश्किल थी इतनी बातें को याद करने की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का कुरान होता, पढ़ते जाते कुरान फानी होती जाती, हसूले बरकत ही होता। तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अगर कुरान से जिन भूत भगाने थे, औज़ुबिल्लाह का कुरान होता। बात तो समझ रहे हैं ना, कि जब किसी चीज पे अमल ही नहीं करना, सिर्फ उसको सुनना सुनाना ही है, तो फिर ये अहकामात क्या। तो मैं तो समझती हूँ कि ये सूरतें जब हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे दिल के अंदर इस चीज की गवाही देती है कि इस्लाम इज अ कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ।